जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरषट् श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री किशोर किशोरी जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गौर प्रेमा ऑल ग्लोरीज टू द सेंट डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सेंट डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सेंट डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग जय श्री लपु। कुछ ज्यादा इको दे रहा है, ज्यादा ध्वनि है, ठीक है। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशपारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम्। देखो देखो सचि देखो सिक्स वर्स। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुरुषां अन्ते नारायण स्मृति एतावां संख्य योगाभ्याम स्वधर्म जन्म लाभ पर पुरुषां अन्ते नारायण स्मृति एतावन् संख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुरुषां अन्ते नारायण स्मृते एतावन् संख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसां अन्ते नारायण स्मृते एतावन् संख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसां एतावन् संख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसां अन्ते नारायण स्मृति एतावन् संख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसां अन्ते नारायण स्मृति पढ़िए आप पढ़िए
एतावन् संख्य योगाभ्याम्
एतावन् संख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसां जन्ते नारायण स्मृति एतावान् यही संख्य योगाभ्याम ज्ञान मार्ग द्वारा या अष्टांग योग द्वारा स्वधर्म परिनिष्ठया या वर्णाश्रम आदि स्वधर्म में परिनिष्ठा द्वारा जन्म लाभ जन्म का लाभ वास्तविक फल पर सर्वश्रेष्ठ पुंसां मनुष्यों का अंते अंत में नारायण स्मृति ही नारायण का स्मरण श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसके पहले कहा है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। हे महाराज परीक्षित, आप भारत में जन्म लिए हैं, भरत वंश में जन्म लिए हैं, तो आप इस रहस्य को अवश्य समझेंगे। भारत संबोधन कर रहे हैं, भारत का अर्थ है भरत के वंश में उत्पन्न। महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो कहते हैं कि हे भरत वंशी अर्जुन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी अवस्थाओं में सब तरह से श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, स्मर्तव्य है। किनके द्वारा? जो मनुष्य अभय चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान का ही श्रवण कीर्तन करे। अब ये कह रहे हैं कि इससे बढ़ करके दूसरा कोई श्रेय नहीं है, इससे बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है परम कल्याण प्राप्ति के लिए। तो कहते एतावान, बस इतना ही, यही लाभ है। एतावान संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यही जन्म का पर लाभ है, मनुष्य जन्म का यही लाभ है, यही परम फल है कि भगवान के विषय में सुना जाए, बोला जाए, स्मरण किया जाए। यही पुंसाम परह जन्म लाभ है एतावान, यही है जन्म का लाभ। जन्म बहुत दुर्लभ है मनुष्य का, जन्म प्राप्त हो गया है तो यह जन्म मनुष्य शरीर और भोगों के लिए नहीं है। इस संसार में प्राय लोग एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि मनुष्य जन्म मिल गया है तो खूब खाओ पियो, मौज करो, ये करो ये करो। इस शरीर में कोई मौज कर ही नहीं सकता है, यह भ्रम है। तो शरीर ऐसे ही रोगों की जन्मभूमि है, सारे रोग शरीर में ही होंगे। ये दीवाल में कैंसर नहीं हो सकता है, पत्थर को कफ नहीं होगा, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, सारा रोग मनुष्य के शरीर में भरा गया है। पशु पक्षी से ज्यादा रोग मनुष्य के शरीर में भगवान ने भरा है। तो कोई व्यक्ति भोग ही नहीं सकता इस संसार। भगवान ने ऐसे इस शरीर को बनाया है कि कोई भोगने का उत्साह न करे। अनेक रोग हैं, देखिए अनेक डॉक्टर हैं, ये हैं वो हैं। तो जो भोगों का साधन है वो भोग भोगने के लिए नहीं है, वास्तव में यह मनुष्य शरीर भगवान को समझने के लिए है। और शरीर से जितना अच्छा तरह से भोगते हैं संसार को, उतना मनुष्य शरीर से नहीं भोग सकते हैं। इस शरीर की ये विशेषता है, इसमें ऐसा कान फिट किया गया है, ऐसा ऐसा मुख है, ऐसा हाथ है, पैर है, जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो वास्तव में मनुष्य शरीर केवल केवल श्री कृष्ण को समझने के लिए दिया गया, और कोई इसका दूसरा लाभ नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते एतावन जन्म जन्म लाभ परह लाभ, यही सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य शरीर का। क्या? तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, यही सबसे बड़ा लाभ। और यदि वो कोई यह कहे कि श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन के अलावा और भी तो उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जैसे सांख्य है, योग है, स्वधर्म में निष्ठा है, ये सब बहुत से श्रेय के पंथ हैं। उस सभा में अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए थे, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता था कि आप कैसे कह रहे हैं कि केवल कृष्ण का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, बस। तो सांख्य कहां गया? योग अष्टांग योग क्यों नहीं किया जाए, या वर्णाश्रम धर्म आदि का पालन ठीक से किया जाए तो क्या उससे श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी? श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं होगी, लेकिन यदि ज्ञान मार्ग पर चल करके, योग मार्ग पर चल करके या स्वधर्म में परिनिष्ठा द्वारा कंक्लूजन ये निकल रहा है, फाइनल गेन ये हो रहा है कि यदि नारायण की स्मृति हो रही है तब तो ठीक है। तो नारायण का स्मरण ही जीवन का परम लाभ है, जैसे भी हो। तो सांख्य में, योग में और स्वधर्म पालन में बहुत कम चांस रहता है भगवान के स्मरण का, लेकिन भक्ति जो है श्रवण कीर्तन, उसमें तो शुरू से ही भगवान नारायण का स्मरण होता रहता है। इसलिए वास्तव में भगवान का कीर्तन करना, कथा सुनना, यही है जीवन का परम लाभ, और दूसरा कोई लाभ नहीं। यही श्रेय है, यही साधन है और यही साध्य है। साध्य भी यही है, यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भागवत पढ़ता है, तो वो अपना एम प्राप्त कर चुका है। ये साध्य है, केवल साधन मात्र नहीं है, साधन भी है और साध्य भी है। यही भगवान में प्रेम देगा और प्रेम होने पर यही करना है, साध्य लक्ष्य। स्वतंत्र फल का निवारण कर रहे हैं, सांख्य का कोई दूसरा फल नहीं है। यदि मान लीजिए कोई ज्ञान मार्ग से साधक चलता है और उसे पूरा पूरा ज्ञान हो गया कि मैं ये जड़ देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चिन्मय हूं, और उसी प्लेटफार्म पर वो काम भी करने लगा, लगभग प्राकृतिक वस्तुओं से, विचारों से प्रभावित नहीं हो रहा है, स्पिरिट को मैटर से पूरा पूरा अलग समझ रहा है, कर भी चुका है, अथवा जो व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह करके, प्राणायाम आदि करके और अपने मन को ध्यान में लगा चुका है, प्रकृति के पदार्थ से परे चित्त को एकाग्र कर चुका है, कहने का आशय वह, और दूसरा वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्म का खूब तत्परता से पालन कर रहा है, इसको परिनिष्ठा कहते, परितःनिष्ठ लगा हुआ है, कोई पाप नहीं करता है, गृहस्थ है तो गृहस्थ के धर्म का पालन कर रहा है, सन्यासी सन्यासी के धर्म का पालन कर रहा है, और भी जो जिसका धर्म है वो कर रहा है। तो उसका लाभ क्या है, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले या कर्म मार्ग से चले, लाभ यही है नारायण स्मृति। यदि इन सबको करने में नारायण का स्मरण हो रहा है, भगवान की लीलाएं याद आ रही हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन होता है, भगवान के प्रति सेवा हो रही है, तब तो ठीक है, नहीं तो ये सब बेकार, जब बेकार। हम एक दिन आ रहे थे भरत भाई के साथ, तो ये चर्चा हो रही थी, नहीं उनके साथ आ रहे, हरी लीला प्रभु के साथ, ह्यूस्टन में एक हरी लीला प्रभु, तो उन्होंने कह दिया कि अमेरिका में जिसके पास फोन ना हो और कार ना हो तो उसका जीवन बड़ा असुविधामय है। तो मैं कह दिया कि हाँ, इंडिया में भी लोग कहते हैं कि बेकार आदमी है, जिसके पास कार नहीं है वो बेकार है। ऐसे बे माने नहीं, सरकार बनकार तो बेकार हो गया। हमने विनोद में ये अर्थ किया, जैसा बेकार का ये यहाँ बहुत अच्छा अर्थ होगा, जिसके पास कार नहीं वो बेकार। लेकिन वास्तव में हमारे देश में इस शब्द का जो प्रयोग करते हैं, बेकार, बेकार का मतलब किसी काम का आदमी नहीं, जिसके जीवन में भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं है, नारायण का स्मरण नहीं है, चाहे साधन काल में या चाहे फाइनली अंत में, तो उसका जीवन विफल है। पग पग में क्षण क्षण में भगवान का स्मरण ही जीवन का फल है। यहाँ अंते नारायण स्मृति का यह अर्थ नहीं कि मरते समय स्मरण, अंत का अर्थ होता है कंक्लूजन, अंत का अर्थ जस्ट एंड नहीं होता है। कुछ भी करे अगर फाइनली निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बराबर भगवान कृष्ण का स्मरण आ रहा है, स्मरण आ रहा है, तब तो ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाहे स्वधर्म से चलो, चाहे योग से, सांख्य से, भक्ति से, कैसे भी मरते समय नारायण का स्मरण हो जाना चाहिए, यही जीवन का लाभ है। ये अर्थ नहीं है। अंत का अर्थ है मरना नहीं है यहाँ पर। जैसे वेदांत, वेद अंत वेदांत, तो वेद का मरना उसका अर्थ नहीं करेंगे, वेद खत्म हो गया नहीं, वेद का निष्कर्ष पर्यवसान उसको वेदांत कहते हैं। तो अंते का अर्थ पर्यवसान रूप में, कंक्लूजन के रूप में, फल के रूप में यदि नारायण का, कृष्ण का हमेशा स्मरण हो रहा है, भक्ति हो रही है, तब ठीक है, यही जीवन का लाभ, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। उस सभा में बैठे हुए अनेक ज्ञानी, अनेक योगी, अनेक कर्मी उपस्थित थे और सबके सामने सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जहां भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं है, स्मरण नहीं है, वो ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग सब व्यर्थ। इस तरह से प्रश्न का उत्तर देना इतना क्लियर और दृढ़, अद्भुत बात। तो भगवान का स्मरण करना ही जीवन का फल है, जन्म लाभ परम पुरुष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जीवन की परम सिद्धि क्या है, समसिद्धि क्या है, क्या मिल जाए मनुष्य को तो माना जाएगा कि इसका जीवन सफल हो गया। वो सफलता है जीवन की पग पग में, क्षण क्षण में भगवान कृष्ण का स्मरण। जय हरि कृष्ण। प्राय भागवत पढ़ने वाले भक्त समझते हैं कि अंते का अर्थ है मरते समय, अंते नारायण स्मृति। नहीं नहीं, मरते समय भगवान का स्मरण आ जाए ये जीवन का लाभ, ऐसा अर्थ नहीं है। कुछ भी कार्य करे लेकिन उसका अगर फल ये हो रहा है कि भगवान का स्मरण हो रहा है, चाहे सांख्य द्वारा, योग द्वारा या स्वधर्म निष्ठा द्वारा, तब समझना चाहिए कि ठीक है, मीटर ठीक बता रहा है, ठीक चल रहा है व्यक्ति। और कोई भी कार्य करे उसमें नारायण का, कृष्ण का स्मरण नहीं है, श्रवण नहीं है, चिंतन नहीं है, तो वो व्यर्थ। इस विषय में सदाचारम प्रमाणयति, सदाचार बता रहे हैं। सदाचार का अर्थ सतां आचार सदाचार। पहले के अच्छे लोगों ने, संत महापुरुषों ने जो किया है उसको सदाचार कहते, सतां आचार। पहले के लोगों ने जो बड़े ही शुद्ध थे, महान थे, उन लोगों ने क्या किया है, किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए पूर्व के आचार्यों का प्रमाण देना पड़ता है। पहले के लोगों ने क्या किया, अच्छे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ सिद्धांत कह रहे हैं तो प्रमाण देना पड़ेगा, क्या पहले ऐसा लोगों ने किया है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधि सेधतः नैर्गुण्यस्था रमंते स्म गुणानुकथने हरे। हे महाराज, लगभग 99% मुनियों की बात मैं कह रहा हूं, प्रायण का अर्थ ये है प्रायण, अब मुनि मुनियों के लिए प्रायण शब्द है और गुणानुकथने के लिए भी प्रायण शब्द है। प्राय का अर्थ होता है ऑलमोस्ट, है ना, अंग्रेजी इस शब्द को पकड़ रहा है, प्रायण। प्राय पूर्व काल के जितने भी महान ऋषि हैं, प्राय उनका सारा समय हरे गुणानुकथने रमनते, भगवान के गुण कथन में ही रमते रहे। भगवान की विशेषता कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, दया, ऐश्वर्य, विविध लीलाएं, इन्हीं को अनुकथने रमनते, इसी में रमते रहते। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही एक मुनि हैं, मुनि ही नहीं है बल्कि मुनियों के परम गुरु हैं। वो मुनि मंडली बैठी हुई है, भागवत सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ लोग गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, जिनका जीवन परफेक्ट था, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, सब मुनि सभा लगी हुई थी, और उसके बीच में एक मुनिराज बोल रहा है कि प्रायण मुनयो राजम निवृत्ता विधि से होता नैर्गुण अस्था रमन तेम गुणानुकथने हरे। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वे प्राय भगवान के गुणानुकथन में ही रमे रहते हैं। अच्छा, गुणानुकथन में रमते हैं तो प्राय क्यों लगा रहे हैं? कभी कभी वे सुनते हैं, कभी भगवान की पूजा करते हैं, प्राय का यह अर्थ, नहीं तो लगभग 99% समय उनका भगवान के कीर्तन में, जप में, गुणानुकथन में जाता है, रमनते रमते रहते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई रूटीन बनाया गया है, स्केड्यूल बनाया गया है कि तुम ऐसा करना है, ये करना, नहीं, रमनते रमते रहते। रमु क्रीड़ायाम, संस्कृत में रमु धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा। जब कोई व्यक्ति बिना किसी के फोर्स के, बिना दबाव के, बिना किसी आवश्यकता की बुद्धि के किसी काम में लग जाता है तो उसमें उसको रमण कहते हैं, रम रहा है। जैसे बच्चों को छुट्टी दिया जाए तो खेलने लगे, उनको कोई रूटीन या स्केड्यूल बनाकर नहीं देता है कि ठीक है चलो खेलो, वो अपने आप खेलने लगते, इसको रमण कहते हैं। या शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई युवक पुरुष किसी युवती स्त्री में रमने लगता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देता है कि तुम ऐसे रमो, ये बात करो, ऐसे फोन करो, ये करो करो, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन वो रम जाता है। बल्कि समाज का बंधन होता है, दूसरे लोग मना करते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन रमते रहो, स्वाभाविक मन रमा। तो मुनियों का मन रमता है भगवान कृष्ण के गुणानुवाद में, भगवान की कथा कहने में, कीर्तन करने में, पद गाने में, प्राय गुणा गुण अनुकथने रमनते, रमते रहते, अपने आप उनका मन रमता रहता है। इतना पवित्र मन है कि भगवान के गुणों को ही पकड़ता है, वो संसार के सौंदर्य या शब्द आदि को पकड़ ही नहीं पाता है। इतना मन शुद्ध होता है कि संसार के शब्दों को नहीं पकड़ पाता है। जैसे आपने देखा होगा, यदि टेलीविजन है, यदि बहुत नया टेलीविजन है, शुद्ध है, तो वह आसपास के शब्दों को नहीं पकड़ पाएगा। तो कहीं ट्रांसमिटेड हो रहा है बीबीसी लंदन से, कहां से, उस शब्द को पकड़ रहा है, उस रूप को पकड़ रहा है, लेकिन यहां पास में हल्ला हो, मैच हो, कुछ भी हो, उसको पकड़ता नहीं है ना। देखते हैं इस तरह से मुनियों का मन इस तरह से शुद्ध होता है। वो भगवान के ट्रांसडेंटल दिव्य लोक में होने वाली लीलाएं, उनके रूप गुण को पकड़ लेता है, और ये शिकागो में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसको पकड़ ही नहीं पाता है। ऐसा सेट होता है मन, इस संसार में ही ऐसा संभव हो सकता है। मुनियों की बात तो बहुत दूर की बात। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है कि यदु महाराज, जो भगवान के कृष्ण के पूर्वज हो गए हैं, वे अपने मंत्रियों के साथ एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो कावेरी नदी के तट पर साउथ इंडिया में वे देखे एक अवधूत जमीन में पड़े हुए नंग धड़ंग, कोई साथ नहीं था, न तो कोई वस्तु पास में थे, फिर भी वे परम प्रसन्न थे, परम सुखी थे। तो महाराज जग्गू को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जाकर चरण वंदना करके कहे कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास साम्राज्य है, सेना है, धन है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, पुत्र हैं, सब कुछ है, लेकिन हम दुखी हैं, जल रहे हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कौपीन तक नहीं, और आप आनंद के समुद्र में निमग्न है, क्या बात है। एक राजा प्रश्न कर रहा है एक अवधूत से जो जमीन पर पड़े हुए थे, चटाई भी बिछाने के लिए नहीं थी, लोटा गिलास कुछ नहीं रखे थे। उनके सुख को देख करके राजा जदू बिल्कुल दंग हो गए। कहते आपके आपके सुख का कारण क्या है? ब्रूही आत्मनः आनंदस्य कारणम्, अपने आनंद का कारण बताइए। तो वे अवधूत वास्तव में भगवान दत्तात्रेय थे, ये बताते हैं कि महाराज मेरे 24 गुरु हैं और गुरुओं से बुद्धि लेकर के मैं इतना सुखी, मैं मेरे 24 गुरु मैं 24 गुरु बनाया। ये श्रीमद् भागवत में कथा भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है, उद्धव जी को सुना रहे हैं भगवान, अपने अवतार में की गई, दत्तात्रेय के रूप में की गई लीला को, उपदेश को भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुना रहे हैं उद्धव जी। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं, तो उसमें से एक गुरु की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। बाण बनाने वाला एक गुरु था उनका। गुरु का मतलब यह है कि वे शिक्षा ले लिए थे, कोई उपदेश आकर के नहीं किया था। ऐसा नहीं समझना चाहिए गुरु बनाए थे तो गुरु आकर के प्रवचन किया होगा, कुछ शिक्षा दिया होगा, नहीं नहीं वो ले लिए थे शिक्षा, यह अर्थ है, सीख लिए थे, इसे ये सीखे, इसे ये सीखे। तो एक बाण बनाने वाला व्यक्ति था, एक शहर में रहता था, बाण समझते हैं ना, तीर बनाने वाला। तो बाण को सीधा करने के लिए उसको लोहे अग्नि में गर्म करता था, लोहे का बाण, और उसको काटता था, पीटता था, उसके नोक को सीधा करना चाहता था। उस कार्य में उसका चित्त इतना लगा हुआ था, इतना लगा हुआ था कि संसार की अन्य बातों को कभी देखा ही नहीं, कुछ दिन की बात। और उस राजमार्ग पर, चौड़े सड़क पर, उस दिन राजा की शोभा यात्रा निकल रही थी। उस शहर का राजा, उस देश का सवारी निकला, तो उसके साथ हजारों हजारों लोग निकल रहे थे, बाजे गाजे बैंड बाजे सब चल रहे थे, बहुत आवाज हो रही थी। लेकिन वह बाण बनाने वाला इतना व्यस्त था, बाण को सीधा करने में, नुकीला करने में, तप्त करके फिर पीटता था, काटता था, ये करता था, नापता था, कि राजा की सवारी निकल गई, अनेक तान तरंग, बैंड बाजा, जोर जोर की आवाज होती रही, और उसका ध्यान गया ही, उस जुलूस के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं गया। और श्री भगवान, भगवान दत्तात्रेय जो अवधूत के रूप में थे, वो बगल में ही सब देख रहे थे, तो ऐसे घूमते रहते थे, वो देखे इसकी एकाग्रता को। और शायद ऐसा अनुमान किया जाता है कि भगवान दत्तात्रेय जाकर के पूछे कि इसके पहले यहां कुछ हुआ, तो कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे थे? मैं तो अपना बाण बना रहा था। तो कोई सवारी कोई जुलूस गया तो नहीं, कुछ ही पता नहीं चला। इस तरह से जब संसार में भी, संसारिक काम में भी चित्त एकाग्र हो सकता है, तो फिर भगवान के रूप में, लीला में, चरित में मन जिसका लग जाए, तो वो कैसे संसार को पकड़ पाएगा? पकड़ ही नहीं पा सकता है। तो पहले के जितने भी ऋषि मुनि थे, प्रायः भगवान के रूप गुण लीला पर मुग्ध रहते थे और अनुकथने रमनते, भगवान के जप में, कथा में, कीर्तन में रमे रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गुणानुकथन में भगवान के स्मरण में वर्णन में एक अद्भुत सुख है, उस सुख के आवेश में उसमें रम जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त जन मुनि जन परस्पर मेरे गुणों की चर्चा करते हैं, उनका चित्त मुझ में रमा रहता है। मत चित्ता मदगत प्राण है, उनका चित्त मुझ में रहता है, उनकी इंद्रियां मुझ में रहती हैं, एक दूसरे से मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते रहते हैं, और ये इसी में तुष्ट रहते हैं, इसी में रमे रहते हैं, यही उनका सुख है, यही उनका रमण है। जैसे विषयी जन विषयों में रमते रहते हैं, वैसे भक्त जन भगवान के गुणानुवाद में रमे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर में नियम बना दिया है, भाई 8 बजे तुमको ये करना है ये करना है, इसके लिए नहीं, वो स्वाभाविक रमे रहते हैं, इसको रमण कहते हैं। और तुष्यंति च, इसी में उनको तोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, इसलिए रमे रहते हैं। जीवन का यही लाभ है, भगवान का जप करना कीर्तन करना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जितने भी ऋषि मुनि हैं, चाहे वर्तमान समय में हो चाहे पहले के हो, सभी भगवान के गुणान कीर्तन में ही रमे रहते हैं। यह है प्रमाण। तो कोई ऐसा नहीं वहां पर कह सकता था नहीं 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 कुछ लोग तो केवल ध्यान में डूबे रहते हैं, आप कहते हैं गुणानुवाद में कीर्तन में रमे रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा जाता है कि ध्यान में डूबे रहते हैं, नहीं बहुत कम चरित सुनहिता जी ध्यान, ऋषि लोग ध्यान छोड़ छोड़ करके भगवान की कथा सुनते हैं, गमते हैं। जो सुख भगवान के कीर्तन में है, जो भगवान की कथा में है, वो सुख भगवान के ध्यान में भी नहीं है, ऐसा भागवत में लिखा गया है। जो कृष्ण को देखने में और सुनने में उनके प्रति उनकी लीला को आनंद है, जो गाने में आनंद है, ब्रह्म का ध्यान करने में भी वो सुख नहीं। यही कारण है कि भगवान स्वयं ही कीर्तन करने के लिए, अपनी कथा सुनने के लिए, बोलने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो अपने स्वरूप से कृष्ण अपना कीर्तन क्या करेंगे? तो भगवान तो घाटा में पड़ गए, अपना आस्वादन करने के लिए, अपना नाम गाने के लिए, अपना कीर्तन करने के लिए, कथा सुनने के लिए वे आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान की बहुत बड़ी इच्छा थी, साध थी बहुत काल से कि मैं कब अपना अपनी भक्ति करूंगा। इस भक्त को ज्यादा आनंद मिलता है भगवान से, भगवान के स्वरूप में वह सुख नहीं है जो भगवान की भक्ति में है, इसलिए भगवान भक्त भाव स्वीकार करते हैं। भक्त बन करके और अपने विरह में रोते हैं, अपने विषय में गाते हैं, और इधर जीवों की क्या दशा है कि ये चाहते हैं कि हम भगवान हो जाए। तो भगवान हो भी जाओगे तो घाटा में पड़ जाओगे, ये तो भगवान हो नहीं पाएगा कोई, ये तो एक पागलपन है। ये सोचे कि मैं भगवान हो जाऊं, बहुत दिन जीव रह गया, बहुत दिन दुख भोगा, जन्म मरण में रह गया, भगवान बनना चाहिए, भगवान बनूंगा तब फुल एक्सटेंड तक विषय भोग करूंगा, भगवान बनने पर पावर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भगवान तो कोई बन नहीं पाएगा, भगवान तो एक ही है। लेकिन कदाचित मान लीजिए अगर कोई भगवान बनता भी है, फिर भी तो घाटा में ही रहेगा, भक्त की अपेक्षा घाटा में रहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं ही भक्त बन कर आ रहा है। तो दिव्य लाभ के लिए भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आए भक्ति करने का, भक्ति में ज्यादा सुख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान मुनिजन कोटि कोटि वर्ष तक जीवित रहते हैं, अब तक सभी जीवित हैं, पर काम क्या करते हैं? नारद जी को देखे तो वीणा बजा बजा करके भगवान का जस गाते रहे, यही काम है 24 घंटे, यही रमण है, यही सुख है, आनंद है, और इसके द्वारा जगत को सुखी करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत भारी भारी इंटरप्राइजेज, कारखाना, ये खोलो ये खोलो, इसे न तो व्यक्ति स्वयं सुखी हो पाता है न दुनिया को सुखी कर पाएगा। बारंबार कहते हैं जितना ही सुविधा बनाई जा रही है, जितनी सुविधा बनाई जा रही है उतना ही जीवन दुखी होता जा रहा है। तो प्रभुपाद जी एक टेप में बोल रहे हैं, जैसे रोड एक्सटेंशन, सरकार रोड रोड का विस्तार करती है कि आराम से जाएंगे आएंगे, फिर भी ट्रैफिक जैम करते हैं, फंस जाता है आदमी। दुख है, कुछ भी उपाय कीजिए, यहाँ एक दुख का जो प्रतिकार किया जाता है वो स्वयं ही एक दूसरा दुख है। इस बात पर बहुत विचार किया गया। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है क्या है, और पहले के लोगों ने, अब के महात्माओं ने क्या लाभ लिया है? भगवान का जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, भागवत पढ़ना, यही जीवन का लाभ। इसके अलावा कोई दूसरा लाभ नहीं है। फिर किसी को विश्वास न हो तो पता लगा ले पहले के ऋषियों का कि वो लोग क्या करते थे, इसीलिए प्रभुपाद ही क्या करते थे। अब देखिए तो रात्रि में जग करके श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे, डेक्टा फोन पर अनुवाद कर कथा बोलते थे, जप करते थे। जहां जाते थे तो प्रभुपाद जी क्या देते थे? कथा देते थे। जहां भी जाते थे तो भगवान की कथा में रमते थे, रमते थे, रमते थे। ये है मुनियों का चरित्र। मुनि का अर्थ है मननशील, परम विद्वान, जिसका जीवन परफेक्ट है वो है मुनि। तो मुनि जन प्राय भगवान के गुणानुकथन में ही रमते रहते। तो इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं कि किम इदम अपूर्वम भाषसे, आप तो बिल्कुल नई बात बोल रहे हैं, आप तो नई बात बोल रहे हैं, अब तक तो ऐसा किसी ने नहीं कहा था। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अवश्य अपूर्व बात है पहले का, लेकिन वचन जो है अपूर्व हो रहा है, पहले इस प्रकार की बातें कही नहीं गई थी खुल करके। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। तो पहले के ऋषियों ने, पहले के महात्माओं ने इस बात का प्रकाशन क्यों नहीं किया? सुखदेव गोस्वामी कहते इसलिए यह जो मैं कहने जा रहा हूं इदं भागवतं नाम, इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि महाराज आपके सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवतम है, और मैं आपको श्रीमद् भागवतम देने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। तो जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसे सारा समझ में आ गया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अकस्मात कहते हैं इदं भागवतम नाम। इदं का क्या अर्थ है? इदम का अर्थ वहां पुस्तक नहीं रखी गई थी, कैसे बुक दिखा करके कहे कि ये भागवत नाम का पुराण है, ऐसा नहीं कह रहे। इदम से तात्पर्य है जो मैं कह रहा हूं भगवान के गुणों का अनुकथन जो ऋषियों ने किया है, यह जो श्रीमद् भागवतम पुराण है यह शब्द से अभी अभी प्रकाशित हुआ, अभी पब्लिश्ड हुआ, कहने का मतलब नया नया। इदम ध्यान देने की बात है, कोई कोई ऐसा समझेंगे कि शायद सुखदेव गोस्वामी पोथी को दिखा कर कह रहे इदम भागवतम नाम, नहीं। इदम का अर्थ है कि यह बिल्कुल अर्वाचीन पोथी है, मतलब नहीं, हाँ अर्वाचीन नवीन पोथी है, यह श्रीमद् भागवतम नाम का पुराण है, ब्रह्म सम्मितम, यह सर्व वेद तुल्य है, अथवा ब्रह्म को जिसमें पूरा पूरा मितम नाप दिया गया है। भगवान कृष्ण की सुंदरता कितनी है, गुण क्या है, दया क्या है, ऐश्वर्य क्या है, पूरा पूरा इसमें वर्णन कर दिया गया। ब्रह्म को पूरी तरह से मितम माप दिया गया है इसमें। जिस ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में लोग अटकलबाजी करते हैं, ब्रह्म कैसा है, भगवान कैसा है, ये कैसा है, उसको श्रीमद् भागवत में पूरा पूरा बता दिया गया है कि भगवान ऐसा है, विशेष करके दशम स्कंध पूर्ण रूप से बताया गया है। तो इसको ब्रह्म संहितम का, और इदम शब्द यह बता रहा है कि महाराज आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर यह श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम उत्तर है। तो आप उस प्रश्न से जरा लिंक मिलाइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। तो उत्तर यह है कि उसे श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, उसे श्रीमद् भागवतम बोलना चाहिए और श्रीमद् भागवत में वर्णित लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। उत्तर हो गया, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादः। यदि महाराज परीक्षित पूछे कि आपको कहां से भागवत मिला, कहां से प्राप्त हुआ, तो कहते हैं कि पितुः द्वैपायनात् अहम् अधीतवान्। मैं भगवान वेदव्यास देव से इसको पाया हूं। अध्ययन का अर्थ होता है संस्कृत में प्राप्त करना, केवल पढ़ना नहीं। अधि अयन अधिकार से अधिकार पूर्वक, अयन का अर्थ प्राप्ति, जिस चीज को आदमी लेता है उसको अध्ययन करते हैं। आजकल कोई पढ़ ले तो सोचेगा कि अध्ययन कर लिया, यही अध्ययन नहीं। तो मैं अपने पिता से द्वैपायन से इसको प्राप्त किया हूं। कब? द्वापरादौ पितुर्द्वय अभीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायन। द्वापर द्वापराधव काल का वर्णन किया गया है कि द्वापर आदिर जस्य कालस्य तस्मिन काले, अर्थात द्वापरांते। कलयुग को द्वापराधव कहते हैं, द्वापर युग कलयुग के पहले आता है। तो इसका मतलब कलयुग चालू होने वाला था, द्वापर समाप्त हो गया था। संतनु महाराज का काल था जब भगवान वेदव्यास देव का अवतार हुआ था, तो उन्होंने भागवत की रचना किया नारद जी के उपदेश से, भगवान के गुणों का वर्णन किया। तो मैं अपने पिता वेदव्यास देव से द्वापर के अंत में ये ग्रहण किया हूं, भागवत पढ़ा। इस पर महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आप तो प्रकृति से पार निर्गुण स्थिति में थे, प्राकृत कोई शब्द रूप रस गंध में आपकी आसक्ति नहीं थी, तो आप इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन कैसे किए? आपको क्या जरूरत थी इसको करने की? जो प्रकृति को पार कर चुका है, माया को पार कर चुका है, जिसका मन भगवान में पूरा पूरा अविष्ट है, वो क्यों पढ़ेगा इसको? एक प्रश्न बनता है। आजकल के लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि अब तुम भगवान पक्के भक्त हो, भगवान में मन लगा है, भगवान का नाम जप करते हो, तो भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है, भागवत सुनने की क्या जरूरत है? सुनिए सुखदेव गोस्वामी का उत्तर। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहित चेता राजर्षर आख्यानम जद अधीतवान। हे महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं प्रकृति से पार था, बिल्कुल प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर मेरी स्थिति थी, भगवान में मेरा मन पूरा पूरा लगा हुआ था। इसको परिनिष्ठा कहते, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये। और जितने जीव हैं सब प्रकृति के भीतर हैं, प्रकृति के द्वारा उपस्थापित वस्तुओं को भोग रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी प्रकृति से बिल्कुल पार थे। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, नैर्गुण स्थिति पर मैं था, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया भगवान श्री कृष्ण की, जिनको उत्तम श्लोक कहते हैं, लीला ने मेरे चित्त को ऐसा खींचा कि मैं आकर के इसका अध्ययन किया। उत्तम श्लोक ले लिया, गृहित चेता राजर्षर आख्यानन जब अधीतवार, जब अधी, इसीलिए मैं अध्ययन किया इस आख्यान के, भगवान की लीला ने मेरे चित्त को पूर्णतः खींच लिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के लीलाओं में, श्रवण कीर्तन में वह सुख है जो ब्रह्म प्लेटफार्म पर नहीं है, प्रकृति से पार जो भगवान की सत्ता है उसमें वो सुख नहीं है जो भगवान के कथा कीर्तन में सुख है। तो उस प्लेटफार्म से मेरे चित्त को खींच लिया भगवान की लीला ने। वास्तविक वार्ता ये है कि भगवान वेदव्यास देव नारद जी के उपदेश से भगवान के लीला वर्णन प्रधान ग्रंथ की रचना किए, भगवान की लीलाओं को संकलित किए समाधि में और ग्रंथ की रचना कर लिए। इसके बाद वो विचार करने लगे कि मैं किसको पढ़ाऊं, भागवत किसको पढ़ाऊं। तो उन्होंने अपने जैमिनी वैशंपायन आदि शिष्यों पर विचार किया, कोई भी योग्य नहीं मिला उनको जो भागवत को ग्रहण करे। किसी के कर्म में रुचि थी, किसी की कुछ में रुचि थी, किसी की मैनेजमेंट में रुचि थी, किसी की किसी में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने दिया ही नहीं किसी को। बद्रिक आश्रम में वे ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने लगे जो इस श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कर सके। उन्होंने बहुत तप किया, तपस्या के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ उनकी पत्नी के गर्भ में। लेकिन एक विचित्र घटना घटी, वो बच्चा एक वर्ष के बदले 12 वर्ष गर्भ में रह गए। और भगवान वेदव्यास देव से कहते थे कि बेटा तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ, बाहर आओ, तुम्हारे माँ को कष्ट हो रहा है। लेकिन वो उधर से जवाब देता था कि बाहर आने पर माया घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान वेदव्यास देव भगवान कृष्ण के पास गए, उन्होंने उनसे विनय किया, वो बेटा से पूछे कि तो तुम कैसे बाहर आओगे। तो उसने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण साक्षात आ करके आश्वासन दें कि मैं माया में नहीं गिरूंगा, माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तब तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं। तो भगवान वेदव्यास देव भगवान कृष्ण की पूजा किए, उनसे कहे, प्रकट हुए। भगवान ने डायरेक्ट आश्वासन दिया सुखदेव गोस्वामी को, ठीक है तुम बाहर आओ, माया का कोई प्रभाव तुम पर नहीं होगा। इतना कहे और भगवान चले गए, अदृश्य हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, गर्भ से प्रकट हुए तो उस समय 12 वर्ष के बाद प्रकट हुए थे, लेकिन लगते थे 16 वर्ष जैसे। और यह पुत्र उत्पन्न किया गया कि इसको भागवत पढ़ाया जाएगा, जिससे संसार में भागवत कहे, लोगों को भगवान की भक्ति सिखावे। बहुत बड़े मनोरथ के साथ भगवान वेदव्यास देव ने पुत्र पैदा किया। लेकिन पुत्र इतना अविष्ट था ब्रह्म में, इतना अविष्ट था कि वो कुछ भी विचार नहीं किया, गर्भ से निकला, निकलते ही घर से भी निकल। और भगवान वेदव्यास देव पीछे से बेटा बेटा पुत्र पुत्र करते जा रहे थे, मैं बहुत मनोरथ के साथ तुमको उत्पन्न किया हूँ, भागवत रच करके पढ़ाने के लिए स्पेशल तपस्या द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गया था भगवान भक्त से, लेकिन वो बेटा तो चल दिया घर से। अब कोई उपनयन संस्कार नहीं हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, बड़े चिंता में पड़े। बहुत वार्ता हुई है, महाभारत में बात लिखी गई है, क्या क्या वेदव्यास देव कह रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। वो चले ही गए, लौटे नहीं। तो भगवान वेदव्यास देव बहुत दुखित हुए इस बात से, ओहो भागवत को कौन ग्रहण करेगा, इतना दिव्य निर्मल ग्रंथ जिसके कर्म में ज्ञान में योग में कोई आसक्ति नहीं होगी, दूसरा कोई काम नहीं करता होगा, उसको भागवत दूंगा। तो बेटा तो चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ शिष्यों को जो कम उम्र के थे भागवत के कुछ श्लोक सिखाए वेदव्यास देव, जिसमें भगवान के दया का वर्णन, भगवान के सौंदर्य का वर्णन था 10वां स्कंद। और उन्होंने कहा कि तुम लोग वन में ये गाते हुए घुमा करो श्लोक, कुछ 2-4, 10-20 श्लोक सिखाए। खास करके ऐसे वन में पता लगाया कि सुखदेव उधर रहता है वन में बहुत दूर, तो उधर भेजे। तो बच्चे गाते रहते थे भागवत के श्लोक। एक बार की बात थी, सुखदेव गोस्वामी ध्यान से दो श्लोक सुने, गाया जा रहा था। एक श्लोक है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघां सया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे मा। यह श्लोक उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से, कह रहे हैं कि पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान कृष्ण का वध करने के गई थी, लेकिन भगवान ने उसके दूध को पी करके उसको अपने माता की गति दे दिया, जशोदा जैसी गति दे दिया। ऐसे श्री कृष्ण के अलावा कौन दयालु है जिसकी शरण में लो। रो रहे हैं उद्धव जी भगवान की याद करके, कि जो पूतना जैसी कर्कश हृदय राक्षसी से इतना प्रेम कर सकता है, माता की गति दिया, उनसे बढ़ करके कौन दयालु है जिसकी मैं शरण लू। ये श्लोक सुना जिसमें भगवान की दया का वर्णन, कृपा का वर्णन सुखदेव जी ने सुना, और दूसरा श्लोक सुना, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद् गीत कीर्तिः। इस श्लोक का वर्ण विषय है कि भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ वृंदावन में नाचते हुए थिरकते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसी कछनी काचे हैं, कैसा मयूर पीछ है, कैसी वनमाला है, और कैसा वस्त्र है, कैसा सांवला शरीर है, और बांसुरी के छिद्रों में अपनी अधर सुधा को प्रवाहित कर रहे हैं। नाचते हुए गोप सखा इनकी कीर्ति गा रहे हैं और उस कीर्ति गान पर भगवान बंसी बजा रहे हैं। नाचते हुए थिरकते हुए झूमते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस लीला को सुखदेव गोस्वामी ने सुना इस श्लोक को। तो एक में भगवान के कृपा का वर्णन और दूसरे में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, दो को सुना। तो उन लड़कों के पास सुखदेव गोस्वामी आकर के पूछते हैं कि ये श्लोक तुम लोगों को कहां से मिला, कहां से सीखे, और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, कितना सीखे हो इस प्रकार का श्लोक। और ये भगवान की लीला सुन करके उनका मन अब ब्रह्म से हट गया। इसका मतलब ब्रह्म चिंतन में जो सुख था उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना लीला श्रवण में सुख था। एकदम मन बाह्य हो गया और तड़पने लगे, सुनाओ 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 ऐसे सुनाओ। तो उन लड़कों ने कहा कि हमारे गुरु महाराज तो ऐसे 18,000 श्लोक रचे, 18,000 श्लोक रचे, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? वो लोग बताए कि भगवान वेदव्यास जब हमारे गुरु। तब सुखदेव गोस्वामी याद कि वो तो हमारे पिताश्री हैं, और पिताश्री हैं, और उन्होंने कहा भी था कि भागवत पढ़ाऊंगा मैं तुमको, लेकिन मैं चला आया। तो अपनी गरज से सुखदेव गोस्वामी वन से लौट करके आए अपने पिता के पास, और आ करके शरण लिए और कहे कि मैं भागवत ग्रहण करना चाहता हूँ। उसी को कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम जद अधीतवान। भगवान उत्तम श्लोक के लीला ने मेरे चित्त को ऐसा पकड़ा, ऐसा आकर्षित किया कि मैं आकर के इसका अध्ययन किया। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना टॉप साधना है सबसे बढ़ करके, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एकदम सुप्रीम साधना पर थे, वहां से आकर के सुन रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन और महामंत्र का कीर्तन जप, इनके साथ और किसी साधन की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्र कहता है, बहुत दुर्लभ चीज है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं आकर के अपने पिताजी से इसका अध्ययन किया, जिसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है और जीवन का जो भी श्रोतव्य है, कर्तव्य है, जप्य है, सबका वर्णन है। सो हम वह श्रावयिष्यामि महापौरुषिको भवान जस श्रद्धता मासो स्यान मुकुंदे मति सती। सो अहम, वही मैं जो अपने पिताजी से मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ा हूं, वह मैं आपको सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित ने यह रिक्वेस्ट नहीं किया था कि हमको भागवत सुनाइए, उन्होंने तो जनरल प्रश्न किया था कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बस भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाऊंगा। भरी सभा में इतना शुभ वाक्य सुखदेव गोस्वामी बोले, महाराज परीक्षित को तो रोमांच हो गया सुनकर। सो अहम श्रावयिष्यामि, अहम श्रावयिष्यामि, मैं सुनाऊंगा। क्यों सुनाएंगे? महाराज परीक्षित की क्या योग्यता है इसे सुनने की? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महापौरुषिको भवान, आप महापुरुष के भक्त। भगवान विष्णु को, कृष्ण को महापुरुष कहते हैं। सभी विषयों में भगवान वास्तव में महा है, पुरुष तो जीव भी है लेकिन श्री कृष्ण महापुरुष। शरीर के सौंदर्य में, भाषा में, ज्ञान में, किसी भी विषय में, आयु में, कंट्रोलिंग पावर में वे महा है, ग्रेट है, ग्रेट। भगवान विष्णु का जो श्री विग्रह है उसमें अद्भुत आंखें हैं, आंखें बड़ी बड़ी और बिल्कुल स्वच्छ कमल के समान। यदि इस शब्द का प्रयोग किया जाए कमल नयन, तो उसका सीधा अर्थ भगवान विष्णु होता है। कहना नहीं पड़ेगा कि कमल नयन भगवान विष्णु। यह स्मरित पुंडरी काक्षम सब बाह्या ग्रंथ रस, अक्ष का अर्थ आंख। जो पुंडरी काक्ष का, कमल नयन का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। सारे ब्रह्मांड में यह बात विदित है कि भगवान की आंखें कमल से भी अधिक सुंदर, तो कमल नयन उनका नाम ही है। और दूसरे लोग वाच्य नहीं हो सकते हैं, जैसे भगवान शिव की आंख है तो उनकी आंखों के विषय में कहा गया मरकट लोचना, उनका ससुर ही बोला सभा में ये बानर जैसा आंख लिया है और हमको प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव की निंदा कर रहे थे तो लगे कहने, वैसे भगवान शिव का विकट रूप है भी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, वो सांप लपेटते हैं, चीता की राख लपेटते हैं अपने शरीर में, हड्डी का गहना पहनते हैं, सोना चांदी का कभी नहीं पहने, हड्डी का और माला किसका, कटे हुए मस्तक की माला पहन, मुंडमाल धारण कर, तो उसी के अनुसार उनकी वो आंखें भी बना लिए, भयावह है आंखें। लड़के तो देखकर त्रस्त हो जाते, हार्ट अटैक हो जाएगा देखकर, भाग जाते हैं शिव जी को देखकर। तो इस तरह की बात है, लेकिन भगवान विष्णु उनकी आंखें इतनी सुंदर, उनका बांह, उनका पैर सब कुछ सुंदर, और हाथों में स्पेशल मार्क्स है, कई निशान है, और चरण में भी चरण चिन्ह है, हस्त में चिन्ह है, भगवान की भुजाएं आज जानू तक लंबी है, भृगु पद चिन्ह है, सब कुछ विलक्षण, एक विलक्षण शरीर है भगवान का, स्वरूप है, तो इसलिए उनको महापुरुष कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना जी जब देख रहे थे ये क्या है, तो कहते हैं कि इसमें तो सब महापुरुष का लक्षण है। महापुरुष मतलब भगवान विष्णु का, कृष्ण का लक्षण। वो देखने लगे, एक बार माता शशी ने देखा कि चल रहा है तो कई चरण चिन्ह उभरे हुए स्पष्ट, कमल जव अंकुश इत्यादि, तो स्पेशल भगवान का स्वरूप है, इसलिए उनको महापुरुष कहते हैं। और ऐसे महापुरुष का जो भक्त होता है उसको महापौरुषिक कहते हैं। महाराज परीक्षित महापुरुष के भक्त। क्या पुरुष का भक्त होना है? महापुरुष का भक्त होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कभी कभी जो कहते हैं, हाँ ठीक है आप लोग तो कृष्ण के भक्त हैं, हम दूसरे के हैं, हम इस पंथ के हैं, हम उस पंथ के हैं, हम उस पंथ के हैं। लेकिन भागवत सुनने का अधिकार किसको है? जो महापौरुषिक है, जो वैष्णव है, जो विष्णु का है, भगवान का भक्त है, वही भागवत समझेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं भागवत सुनाऊंगा इसलिए कि आप महापुरुष के भक्त। श्रीमद् भागवतम की महिमा आप बता रहे हैं। जस श्रद्धतताम आसु श्यान मुकुंदे मति सती। जिस श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा करने वालों की मति मुकुंद में सती हो जाती, तुरंत लग जाती, अनन्य भाव से मति भगवान में लग जाती। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है कि इसे कोई पढ़ने की इच्छा करे या सुनने की इच्छा करे उसी समय कृष्ण में उसकी मति अनन्य भाव से लग जाती है। आशु, आशु का अर्थ तुरंत, जस श्रद्धता, श्रद्धता का अर्थ श्रद्धा। किसी व्यक्ति की ये मति होती है कि श्रीमद् भागवतम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ग्रंथराज है, और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराएगा, भगवान का प्रेम देगा। इस ग्रंथ पर भरोसा जिसको है, लालसा है सुनने और पढ़ने की, उसको श्रद्धता कर, श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा। तो जिसे श्रीमद् भागवतम की सुनने की इच्छा होती है तो आसु, सुनने की इच्छा होते ही मुकुंद में उसकी मति सती हो जाती है, बिल्कुल निर्मल हो जाती है, लग जाती है। सती स्त्री के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जिनके लिए पति ही प्राण होता है सब कुछ। जीवते जीवती या बाला, मृते मृता, ऐसा एक श्लोक में वर्णन किया गया है कि वह स्त्री जो पति के जीवित रहते जीवित रहती है और पति के मृत होने पर उनके साथ ही जल कर राख हो जाती है। इस प्रकार की बाला, इस प्रकार की स्त्री संसार में बहुत दुर्लभ है और ऐसी ही स्त्रियों के द्वारा ये जगत धारण किया गया। एक श्लोक में बताया गया है कि इस पृथ्वी को कौन कौन लोग धारण कर रहे हैं। बताया गया है कि पृथ्वी को धारण करने वाले कई लोग हैं, तो वैसे तो मुख्य भार शेष नाग पर है तो भगवान शेष नाग धारण किए हैं, लेकिन ऊपर से पृथ्वी के भार को हल्का करने वाले कौन कौन लोग हैं जो शेष नाग का भार ना बढ़ सके? वो है भगवान के भक्त, जो भगवान कृष्ण में रचे पचे हैं, विष्णु के भक्त हैं, वे लोगों के चरण विन्यास से पृथ्वी हल्की हो जाती है, जो शेष नाग को कोई भार महसूस नहीं होता। कभी तो देखा है ना, ऊपर से ही टाल लिया जाता है बोझ, कई कई ऐसे क्रेन वगैरह होते हैं जो ऐसे उठा लेते हैं, नीचे से नहीं उठाना पड़ता है। एक दिन मैं देखा एक जगह एक कार को टांगे थे ऐसे, अब खड़े होकर के लोग मरम्मत कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो उसमें है विष्णु के भक्त, वे इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। गौएं, गौएं धारण कर रही, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ ब्राह्मण धारण कर रहे हैं। और एक और भी बात आई है कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले क्षत्रिय इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, और पतिव्रता स्त्री इस पृथ्वी को धारण कर रहे। नहीं तो पृथ्वी कब का रसातल चली गई है, बड़े लोग नहीं होते इस तरह से धारण कर। तो सती का यहां अर्थ है जो जिसकी मति, जिसकी बुद्धि भगवान कृष्ण को ही जीवन में वरण कर चुकी है। हमारे कृष्ण ही सब कुछ है, मुकुंद ही सब कुछ है, चाहे हमारे माता पिता पति भाई सब कुछ, हमारा लोक परलोक, हमारा मोक्ष, धर्म कर्म जो कुछ भी है कृष्ण। कृष्ण के अतिरिक्त जिसके जीवन में कुछ भी सार नहीं, इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग को सती मती कहते हैं। परंतु ऐसी सती मती कैसे भगवान में लगेगी? भागवत सुनने से। जस श्रद्धता आशु, आशु का अर्थ तत्काल, जेव ही व्यक्ति सुनता है, जेव ही पढ़ता है, तेव ही श्री कृष्ण में मति सती हो जाती है, श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानने लगता है। इसलिए महाराज मैं आपको यह श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा, आप बड़े एकाग्रचित से और आनंद से इसको सुनिए। क्या करना चाहिए मरने वाले को या सब समय में, इसका उत्तर हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे बैठे हैं बैठिए और सुनिए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही दृढ़ विचार है सुखदेव गोस्वामी का, मैं सुनाऊंगा और आप सुनिए। इस और अब कह रहे हैं कि महाराज इसके विषय में अन्य ऋषियों को संकेत मिलने कर कह रहे हैं, यही जीवन का परम लाभ है, यही करना है, यही सुनना है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और यह निर्णय है, यह निर्णीत बात है, इस पर कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। चाहे साधक हो और चाहे सिद्ध हो, सबके लिए बस यही करने के लिए बताया गया, यही करने के लिए बताया गया। किसके लिए? तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं संसार में। एक तो एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम, एक इच्छताम, इच्छताम का अर्थ है जो लोग भोगों की इच्छा कर रहे हैं, स्वर्ग की इच्छा कर रहे हैं, जिनको इच्छा है भुक्ति प्राप्त करने की, भोग प्राप्त करने की, उनके लिए अर्थात कर्मियों के लिए। और निर्विद्यमाना नाम जो लोग संसार से उब चुके हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, राग द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो चाहे भोग का इच्छुक है और चाहे मुक्ति का इच्छुक है, अथवा योगी है, योगी का अर्थ भक्त, यदि भक्त है मुक्त है तो सबके लिए योगी नाम निर्णीतम हरेर नामान कीर्तनम, भगवान के नाम को बराबर गाना जपना, ये निर्णय करके साधन बताया गया है। अब इस विषय पर कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ा साधन और लाभ क्या है? हरे नामानुकीर्तन सबके लिए। अगर भोग चाहिए तो खूब जप करना चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए तो खूब जप करना चाहिए, और मुक्त हो गया है तब तो वो गाता ही रहेगा, उसके लिए तो सबसे बड़ा लाभ है। तो चाहे कर्मी के लिए या मुमुक्षु के लिए अथवा भक्त के लिए, किसी के लिए बस यही निर्णय है, हरे नामानु कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, बस यही करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह श्लोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रश्न होगा कि श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा कैसे है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्री भगवान नामात्मक ग्रंथ है, अक्षर अक्षर में भगवान का नाम है, इसलिए इसकी इतनी बड़ी महिमा है। और गुणों से संश्लिष्ट हो गया है, इसलिए बहुत उपाध्याय है, बहुत उपाध्याय है, अतः इसको सुनने मात्र से भगवान में मति लग जाती है। और कोई एतन निर्णीतम, निर्णितम पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इस पर और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है कि भाई भगवान का नाम ही कैसे श्रेष्ठ है, ये है ये है ये इतने निर्णितम। अब इस पर माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि क्या साधन है क्या है। कुछ लोग अभी भी तो चेचा करते हैं, नहीं नहीं ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, कुछ तप भी है, कुछ तीर्थाटन है, कुछ वो है, यज्ञ है, ये है वो है, कुछ तो किया जाए। नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए, चाहे कर्मी हो, चाहे मुमुक्षु हो, या चाहे भक्त हो, सबके लिए निर्णय करके बताया गया है भगवान हरि के नाम का अनुकीर्तन, निरंतर कीर्तन। ये निर्णय तब आप शब्द पढ़ ही रहे हैं, इतना निर्णितम, एतत निर्णितम, एतत हरे नामानुकीर्तन निर्णितम, ये डिसाइडेड है ऑलरेडी। अब इस पर कोई व्यक्ति माथा पच्ची करे, दिमाग भिड़ावे तो बेकार है, वास्तव में कोई सोचने की जरूरत नहीं। हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। और उसमें भी कलयुग में तो हरे नाम हरेर्नामेव केवल, नामेव केवल, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, ये तीन बार हरि का नाम कहने का मतलब और किसी का नाम नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि हरेर नाम हरेर नाम हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव ही केवलम, ये तीनों अव्यय नैश्चित्यवाचक, तीनों यही कह रहा है। एव का अर्थ एव ही केवलम, तीनों का लगभग एक ही अर्थ होगा, लेकिन मतलब दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, इसको कहने के लिए कह रहे हैं। हरि का नाम ही केवलम, हरि का नाम ही केवलम, हरि का नाम ही केवलम, फिर भी कहते हैं न अस्ति अन्येव नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब ज्ञान कर्म जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल भगवान का नाम नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फाइनल निष्कर्ष क्या है कि मनुष्य को सभी अवस्थाओं में अथवा म्रियमाण दशा में किसी भी समय कभी भी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, फाइनल आए। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन वास्तव में टॉप है। ये उनका रियलाइजेशन है जिसे सुनने के लिए वहां सारे ऋषि मुनि बैठे हुए। और किसी के लिए भी यदि वास्तव में कोई व्यक्ति भोग चाहता है, इस पृथ्वी पर वो राजा बनना चाहता है, बहुत फैसिलिटी से रहना चाहता है, तो चाहिए कि जप करे, जप से उसे सब कुछ मिल जाएगा। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, एक श्लोक में कहा गया है कि जप से सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, इसमें संशय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज का प्रश्न था किम जप्यम या जाप्यम, क्या जपना चाहिए, बार बार क्या बोलना चाहिए, तो यही बोलना चाहिए हरेर नामानुकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलना चाहिए। तो यह जब बात उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा जिसको सुनने से कृष्ण में अचल मति लग जाती है, तब महाराज परीक्षित बिल्कुल उदास हो गए, सुनकर खिन्न हो गए। क्यों? जब सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि मैं भागवत सुनाऊंगा, तो महाराज परीक्षित के मन में आया कि हाय रे, मैं तो केवल 7 दिन जीवित रहूंगा, 7 दिन में मैं क्या भागवत सुनूंगा, भगवान की लीला अपार है, गुण अपार है, चरित अपार है, बहुत बरस तक जीने को मिला होता तब मैं भगवान की लीला सुन सकता था। हाय मेरा दुर्भाग्य, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिह, वरं हृतं विदितं घटेत श्रेयसे गतः। महाराज आप चिंता मत कीजिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायमयरिह। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में असावधान है, प्रमत्त है, जिसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसके जीवन के कितने दिन व्यर्थ निकलते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, और इस तरह से मान लीजिए 10 वर्ष 20 वर्ष 100 वर्ष बिता दिया, बहुत लंबी आयु बिता दिया, तो प्रमत्त दशा में लापरवाही में वर्ष के वर्ष बिताए हुए दिनों से क्या लाभ है। जो दिन व्यक्ति बिताते, उनके कहने का आशय था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत वर्ष जिएंगे, अभी आपको तो केवल 7 दिन जीना, लेकिन और लोग बहुत दिन जिएंगे या बहुत काल से जी रहे हैं, लेकिन यदि वे प्रमत्त हैं, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ रहे हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तो बहुत लंबी आयु जीने से भी क्या लाभ है, किम न किमपि, क्या फल होगा। लापरवाह है, जीवन का अर्थ समझे ही नहीं, दिन बीतता जा रहा है, रात बीतती जा रही है, वर्ष बीतता जा रहा है, बीतते बीतते बीत गए, तो उस क्या फायदा, लंबी आयु होने से क्या फायदा। वरम मुहूर्तम विदितम घटे तो श्रेय से जत, विदितम मुहूर्तम वरम, मैं तो उस मुहूर्त को, मुहूर्त मात्र समय को भी श्रेष्ठ मानता हूं जो विदितम, जो जानकारी में बिताया गया, जानकारी में कह रहे मेरा जीवन जा रहा है, मुझे भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, इस चेतना में अगर थोड़ा भी समय बिताया गया तो श्रेष्ठ, वरम तो श्रेष्ठ है, और भगवान कृष्ण के विस्मृति में वर्ष के वर्ष बिताया गया उसे क्या फायदा। थोड़ा भी समय अगर भगवान की भक्ति में बिता दिया गया तो वही श्रेष्ठ है। किसी मनुष्य की आयु 50 वर्ष तक बीत गई, 60 वर्ष बीत गई, तो क्या लाभ हुआ उससे, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर 2-4 साल भी, 2-4 महीना, 2-4 दिन भी अगर जानबूझ करके बिता दिया कि अब मैं व्यर्थ जीवन नहीं जाने दूंगा, भगवान का जप करूंगा, भक्ति करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, तो उसका वो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, उनको आश्वासन दे रहे हैं। और वास्तव में यह बात सबके लिए ठीक है, जितना दिन विस्मृति में गया गया, क्या किया जाएगा, उसको तो लौटा करके लाएंगे नहीं, है ना। अब कोई किसी उपाय से सोचे कि 2003 को लौटा करके लाऊं और फिर से जनवरी चालू करूं, कहां से कर पाएगा। तो 4 चालू हो गया है, चल रहा है, चाणक पंडित जी कहते हैं कि आयुष क्षण में को न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, जीवन का 1 सेकेंड भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा खर्च करने पर नहीं लौटेगा। जो जीवन चला गया और उसमें से 1 मिनट पिछला कोई लौटा सकता है क्या। दुनिया का पूरा सोना दान कर दे कि हमको लौटा दिया जाए, चाहे जमराज जी के पास, चाहे काल के पास, नहीं लौटेगा, जो बीता बीत गया। अच्छा, यह ध्यान रखिए कि जो 1 सेकेंड का समय सुमेरु पर्वत देने के बाद भी नहीं मिलेगा, वैसे ही कई क्षण अभी बाकी है ना, कई क्षण बाकी है, वो तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी क्षण कुछ बाकी है, तो कितना सुमेरु पर्वत है, कितना सोना की ढेरी अभी बाकी है ना, तो अगले क्षण का तो इस्तेमाल कृष्ण के कीर्तन में करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मान लीजिए किसी के पास मिलियंस बिलियंस डॉलर हो और सब बेकार सड़ जाए, खत्म हो जाए, जल जाए, तो अब वो क्या कहेगा कि अरे मेरे पास तो इतना स्टॉक, क्या हुआ उसे, न कुछ खरीदे, न खाए पिए, न घूमे, सब समाप्त हो गया, किसी ने चुरा लिया, चाहे कहीं आग लग गई, जल गया, खत्म हो गया, लेकिन उससे तो कम ही डॉलर हो, लेकिन जिससे आदमी कुछ खरीदे खाए पियो अच्छा है ना। तो पिछला ढेरी ढेरी रह करके क्या होगा। बरम मुहूर्तम विदितम घटे तो श्रेय से जो श्रेय के लिए घटे तो, जो परम कल्याण के लिए बिताया जाए, लगता है वो समय श्रेष्ठ है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो उदाहरण दे रहे हैं, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वा यत्ता निहायुषः मुहूर्तम सर्वम उत्सृज्य गत्वा नभयम् हरिम्। महाराज आपने सुना होगा खट्वांग नाम के एक राजर्षि हुए हैं, सूर्य वंश में भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वे देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग गए थे, इतने प्रतापी राजा थे। बहुत काल तक रक्षा करते रहे तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए महाराज खटवांग से, और उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि महाराज अब आप विश्राम कीजिए, और आपने हमारी बहुत काल तक रक्षा की है, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमसे वर मांगिए। तो वे लोग ये चाहते थे कि ये कहेंगे कि स्वर्ग में हमको कोई परमानेंट जगह दे दीजिए, हम यहीं रहेंगे, भोगेंगे, भोग भोगेंगे। देवता लोग चाहते थे, देवताओं की ये इच्छा थी कि इनकी आयु को बढ़ाया जाए। देवताओं में शक्ति है, आशीर्वाद देकर के कर सकते। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि महाराज आप हमसे बर बर मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हम आपके बहुत अब्लाइज्ड हैं। तो खटवांग महाराज ने पूछा कि हमारी आयु कितनी है, स्वाभाविक आयु मेरी कितनी है। तो देवताओं ने कहा कि वो तो मुहूर्त मात्र है। मुहूर्त मात्र का मतलब लगभग 3 घंटा, एक याम एक जगह पर कहा गया 3 घंटा आप जिएंगे, लेकिन हम आपकी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहें तो हम आपकी आयु बढ़ाएंगे और स्वर्ग का भोग देंगे और देंगे यदि आपकी इच्छा हो। तो महाराज खटवांग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा विमान दीजिए जो सबसे तेज रफ्तार से चलता हो, और मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ, स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, क्योंकि रजो भूमि है। रजो भूमि का अर्थ है रजोगुण बहुत है, वहां बहुत भोग है, वहां स्वर्ग में चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। ये सोचे कि मुझे जब 3 घंटा जीना है तो मैं जाकर अयोध्या जी में भगवान का स्मरण करूंगा। तो देवताओं ने उनको विमान दिया, वे आए तुरंत 1 सेकंड के अंदर अयोध्या, और यहां आकर के भगवान का जप चालू किए और ध्यान चालू किए, और जो ब्राह्मण भक्त आदि थे उनके पास बैठ गए। 3 घंटे के अंदर मुहूर्त मात्र में गत्वा न भयम हरिम, उनके लिए विमान आया वैकुंठ से, और महाराज खटवांग यहां से दूसरे विमान पर चढ़ करके देवताओं के समाज से ही फिर गए। मतलब ये जो भारत वर्ष है, यह वैकुंठ जाने का एयरपोर्ट है, यहां से विमान खुला, स्वर्ग से नहीं। उस स्वर्ग से आया अयोध्या जी, और वहां भगवान का स्मरण भजन किया और वहां से चले गए। सुखदेव गोस्वामी भरी सभा में इस इतिहास को कह रहे, ये सर्व विदित बात थी, इसीलिए उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं किया, एक श्लोक में कह दिया, खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता यह आयुष, आयुष यत्ता ज्ञात्वा, आयु की यत्ता कितनी है, कितनी अवधि है, जान करके मुहूर्तम सर्वम उत्सृज्य गत्वा न भयम हरि, भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिए, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किए जहां कोई भय नहीं। थोड़े समय में जब 3 घंटे में भगवान का धाम प्राप्त किया जा सकता है, तो तवापे तरहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावत् जत्सांतरायिकम्। तवापे तरहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि, हे कुरुनंदन, तव तो ये तरहि, अभी तो आपकी 7 दिन की अवधि है, अभी तो आपको 7 दिन जीना है, बहुत काफी है। सप्ताहं जीवितावधि, महाराज अभी तो आपको सप्ताह तक जीना है। अह का अर्थ है दिन, और सप्त का अर्थ है 7, 7 दिन। और निशा, निशा रात को कहते हैं, इसलिए अहर्निश कहते हैं 24 घंटे को, रात दिन, दिन रात अहर्निश। तो अभी तो आपको 7 दिन जीना है। उपकल पया तत् सर्वम तावत जत सांतराय, तुम अपना परलोक सुधारने के लिए अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए जो भी करना है आप कर लीजिए। तो महाराज परीक्षित ये वाक्य सुने तो आश्चर्यचकित हो गए, जो कुछ करना हो हमें और क्या करना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने उसका संकेत किया कि कुछ भी नहीं, बस सुनिए और कुछ भी नहीं करना है। द परलोक सांप्रायिकम, सांप्राय का अर्थ होता है परलोक का साधन। आपको इस जीवन के बाद भगवान कृष्ण का चरण कमल पाना है, भगवान के पास जाना है पार्षद बन करके, तो उसके लिए आप उपकल्प या तत्सर्व उसको पूरा कर लीजिए। और पूरा करने का मतलब है कि श्रीमद भगवत सुनने के लिए तैयार हो जाए बस। ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी अब कहीं भेजे कि जाइए तीर्थ घूम आइए, उधर ये कीजिए उधर ये कीजिए, यज्ञ चालू कीजिए उधर ये कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, सुनने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है वास्तव में। यह श्रीमद भागवतम के पन्नों से पता चलता है, सुनने के बराबर कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्ताहम, सप्ताह शब्द आया ना, कुछ लोग पूछते हैं ये सप्ताह शब्द कहाँ से आया। ये भागवत के इसी श्लोक में सप्ताह शब्द आया ना, और महाराज परीक्षित ने सप्ताह सुना था। ये सप्ताह सुनना भी अपने आप में एक बहुत पूर्ण बात है, परफेक्ट है। यदि ढंग से सुनाया जाए, सुना जाए, बहुत प्रभाव है श्रीमद् भागवतम का जीवन में। मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवतम अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मनुष्य जीवन पा करके कोई व्यक्ति भागवत नहीं सुना, भागवत नहीं पढ़ा, या भगवान का जप आदि नहीं किया, तो वो तो बिल्कुल एनिमल है वास्तव में। केवल हाथ पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन वास्तव में वो पशु है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि वो भी निकृष्ट पशु है जिसको पूंछ और सिंह नहीं है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशो नर पशु बिन पूछ विषाण। विषाण कहते सिंह को, पूछ मैंने पूछ। जो भगवान श्री राम के भजन के बिना गति चाहता है, भगवान का भक्त नहीं है, तो वह तो पशु है, वह भी बहुत खराब पशु है। जिस पशु को पूछ ना हो और सिंह ना हो तो खराब माने जाते। भगवान ने रक्षा के लिए सिंह बना दिया है, अपनी रक्षा करता है पशु, मगर पूछ से मक्खी आदि हटाता है। मैं देखा है कुछ लोग इधर कुत्तों की छोटी सी पूछ होती है उसको भी काट देते है ना, कुत्ते को ऐसे बेद्रूप कर देते है, मक्खी आदि भी नहीं भुला सकता है, भगा सकता है। तो मनुष्य ऐसे पूछ भी रहता तो कम से कम कुछ मक्खी वगैरह भुला, तो सिंह रहता तो रक्षा करते। ऐसे एनिमल हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते पशु, सब पशु कार चला रहे हैं या भगवान में बैठे हुए जा रहे हैं, सब पशु, भगवान का नाम नहीं ले रहे। तो पढ़े लिखे पशु हैं, लेकिन बस पशु हैं। पशु का क्या अर्थ है, जिसको कोई जानकारी ना हो। तो जिसको भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं है तो पशु नहीं है, तो क्या है। और सब कंप्यूटर रन करना जानता है और काम जानता है, लेकिन भगवान कौन है, उनसे क्या संबंध है, इस विषय में बिल्कुल बोका है, कुछ पता ही नहीं भगवान है या नहीं है। संबंध की बात तो दूर है, भगवान है कि नहीं है पूछिए तो ऐसे करता है आदमी क्या है? अगर है भी तो हमको इससे क्या मतलब, ऐसे पूछते। अगर भगवान है भी तो हमको क्या इससे मतलब। एनिमल इस तरह से पशु जैसे दुर्बुद्धि। समझने की जरूरत, वास्तव में मनुष्य जीवन श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए। जो व्यक्ति जप करता है वास्तव में वही मनुष्य है, जो भगवान से प्यार करता है, भगवान की पूजा करता है वही मनुष्य है, अन्यथा पशु है। पशु ऐसे लंबा पशु खड़ा हो गया है, चार पैर का नहीं है, दूसरे आकार का पशु है, लेकिन भूमि भार होता है। एक श्लोक में कहा गया, चाणक्य पंडित जी कहते हैं, जिस व्यक्ति में तप नहीं है, विद्या नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, इस पृथ्वी के भार भूत पशु, पृथ्वी पर लोड बढ़ाए हुए, तो जीवन की ये सफलता है। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट बोल रहे हैं। खटवांग राजर्षि का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि अब तो जानबूझकर के समय बिताना चाहिए। मान लीजिए 24 घंटे नहीं कोई भजन कर सकता है, अरे एकाध घंटे दो चार घंटे भी जप किया जाए तब भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ देर तो भागवत पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे पूछा एक बार कि महाराज कितना देर भागवत पढ़ना चाहिए, तो मैं कहा कम से कम जितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो उतना देर तो पढ़ो उतना देर तक तो रोज पढ़ो। कुछ लोग तो बिना मतलब के देखते रहते हैं, इधर लाटो 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 लाटो, और ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम पन्ना उलट उलट कर दो चार श्लोक भी देखे तो चलो कुछ तो हुआ। से पढ़ना चाहिए। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टॉयलेट के रूम में, बाथरूम में पढ़ते हैं। कई बार मैं अमेरिका में देखा इधर उधर कि बाथरूम में अखबार फेंका हुआ है, कोई मैगजीन फेंका हुआ है, तो मैं पूछा कि यहाँ क्यों फेंकते हैं, बताए महाराज वहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक ठीक, उचित प्लेस पर पढ़ते हैं। तो मैं कहा कि उसको केवल वहीं पढ़ना चाहिए, बाहर नहीं वहीं पढ़ने योग्य चीज है वास्तव, जब तक बाथरूम में है तब तक पढ़े, बाकी बाहर भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, चैतन्य चैतन्य पढ़ना चाहिए। धर्म है अपने समय को जो बीतता जा रहा है अपने आप हिसाब रखना चाहिए। कोई चतुर व्यक्ति वो अपना स्टॉक रोज देखता है कि हमारा इतना ये चेक बुक से इतना चेक खत्म हो गया, इतना पैसा मेरा लग गया, वो सोचेगा ना, हिसाब जरूर करेगा कि हमारी बचत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चेक लिखता जाए खर्च करता जाए। ऐसी पाश्चात्य देश की नीति है कि आदमी खर्च ज्यादा से ज्यादा कर दे, उसको पता ना लगे, ये क्रेडिट कार्ड या चेक द्वारा पैसा खर्च ज्यादा हो जाता है, आदमी को पता नहीं लगता, कैश देना पड़ता है तो लगता है कि खर्च हो रहा है। लोगों को उल्लू बनाने का एक उपाय है, इस तरह से थोड़ा आंखों के सामने ना दिखाई पड़े। एक बार मैं पूछ दिया एक व्यक्ति से कि यहाँ पर किसी वस्तु का दाम मान लीजिए $4 रखना है, उनको तो रखते हैं $3.99। ये क्यों? तो वो कहे कि इसलिए रखा गया है कि कस्टमर के मन पर असर पड़े कि $3 लिखा गया ये पता नहीं सत्य है या नहीं, लेकिन यही सत्य है। तो ये क्रेडिट कार्ड वगैरह भी इसी के लिए है, तो उसको पता न चले कि इतना खर्च हो रहा है, सामने देख करके तो छनक जाएगा सामने तो सजग हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम मनुष्य को अपने बीतते हुए समय को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कैलेंडर देखा जाता है, रोज कैलेंडर बदलना चाहिए। हाय रे कल तो गया मेरा। टेबल पर आदमी डेट बदलता है लेकिन ये नहीं सोचता है कि मेरा तो गया 24 घंटे। संध्या बंदन आदि का यही रहस्य है कि सवेरे बैठे आदमी सोचे हाय रे रात चली गई, दिन प्रारंभ हो रहा है, शाम को फिर संध्या बंदन करते हैं कि जा दिन भी गया, रात गई दिन आया, दिन गया रात आया। इस तरह से कुछ रात और दिन मिला करके ही तो जीवन है चला जाता। इसको खर्च करने में सावधान होना चाहिए। और खर्च करने में ऐसा नहीं कि आदमी बचा लेगा, तो बचा तो सकता नहीं, लेकिन उसके बदले कमा लेना चाहिए दूसरा, कहने का सही है। समय तो बीतेगा, लेकिन बीते कैसे बीते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह बीते। चाहे भगवान को प्रणाम करने में बीते, कथा सुनने में बीते, भागवत पढ़ने में बीते, जप करने में बीते, पूजा करने में बीते, इस तरह से बीते। तो माना जाएगा कि हमारा पैसा गया, लेकिन बहुत खरीद करके गया है ना, बहुत मूल्यवान चीज मैं ले लिया। अरे भागवत में लिखा गया है केवल एक चाम की जीभ हिलाने से अगर वैकुंठ मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा क्या हो बताइए। केवल हरे कृष्ण बोलने से और वैकुंठ का साम्राज्य पूरा मिल जाए तो कौन व्यक्ति नहीं करेगा। और जबकि अंत में एक दिन जीभ बंद होने वाली है, मरने के बाद तो सारी इंद्रियां ठप हो जाती है, न मुख बोलता है, न जीभ बोलती है, न खाता है, न सुनता है, कुछ नहीं। तो जब तक काम कर रहे हैं तब तक इनसे भगवान का नाम रटना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यही करना चाहिए। अच्छा, ये तो महाराज परीक्षित के लिए तत्कालिक बात बताएगा कि यही करना है, सिद्धांत बताएगा। लेकिन सभी मनुष्यों के लिए, विशेष करके म्रियमाण के लिए क्या करना चाहिए, अब यहां से चालू कर रहे हैं। जो मरने वाला है व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी यही करना चाहिए कि उसे जब चालू करना चाहिए। लेकिन फिर भी घर में रहने पर चेतना दूसरी रहती है, अतः जब जान जाए व्यक्ति कि अब मरना है तो ये करे। अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्व सह, छिंद्यात असंग शस्त्रेण स्पृहान देहे ये चतम। पुरुष, किसी विवेकी पुरुष व्यक्ति को ये पता लगे कि अब मैं नहीं रहूंगा, अब शरीर चाहे एक साल चाहे 6 महीना चाहे 10 दिन का मेहमान है, अब शरीर नहीं रहेगा, तो ये जब जानकारी हो जाए तो पहला काम ये करे कि गत साधो से, डरे नहीं, भय मत करे, क्योंकि वो नहीं मरेगा। मरण से डरना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई डर जाएगा तो जमराज जी माफ कर देंगे, नहीं। इसलिए भय नहीं करना चाहिए, आखिर मरना तो है ही, मरने का मतलब शरीर छोड़ना है, आत्मा तो मरेगा नहीं और शरीर छूटेगा ही। कोई जमराज जी से माफी मांगे चाहे भय करे, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा 2-4 दिन छोड़ देंगे, नहीं, भय करो चाहे कुछ भी करो। तो पहले तो चेतना के विषय में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मन में थोड़ा भी भय ना करे। गत साध्वस, साध्वस का अर्थ होता है भय, भय ना करे कि मर जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे कभी कभी हमने देखा है कुछ बच्चों को इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन के पहले कांपने लगते हैं, नहीं इंजेक्शन नहीं लेंगे, सुई नहीं लेंगे, सुई नहीं लेंगे, और कुशल डॉक्टर जब सुई दे देता है तो इसके बाद हंसने लगता है, अच्छा दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं। वास्तव में इस तरह से ये जीव देह छोड़ता है, छोड़ना तो पड़ेगा, तो घबराना नहीं चाहिए। पहली तो बात यह है कि शरीर जाने से घबराना नहीं चाहिए, और छिंद्या असंग शस्त्र, वैराग्य के शस्त्र द्वारा, तलवार द्वारा देह में जो सुखी होने की लालसा है, और देह तम अनु, और देह के जो अनु है, संबंधी है, स्त्री पुत्र घर द्वार आदि में, स्प्रिहा छिन दे, स्प्रिहा काट दे। अभी बहुत कठिन है विषय आदमी के लिए, देह में स्प्रिहा काट दे और देह के संबंधियों से स्प्रिहा काट दे। स्प्रिहा मतलब, स्प्रिहा मतलब देह में सुख पाने की लालसा काट दे। जब इतना दिन जी करके इससे कोई सुख नहीं मिला, इतना दिन इस देह में रहे सुख नहीं मिला, तो अब इसमें रहकर हम क्या सुख पाएंगे, जो सोचना चाहिए ना। जब जवान थे सुख मिला ही नहीं और सब दुख में ही जिंदगी चली गई, तो अब 2-4 दिन जीना है, 10 दिन जीना है, तो इसमें क्या सुख पाने की इच्छा रखे। इसलिए देह की अवस्थिति पर विचार ना करे कि कैसे रहेगा क्या रहेगा, इसको ठंडा लगे या गर्मी लगे, ये लगे वो लगे, इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। और स्त्री आदि से भी, पुत्र आदि से सुखी होने की इच्छा त्याग देनी चाहिए या स्वयं की इच्छा। गृहात प्रव्रजितो धीरा, आगे के श्लोक में कहा गया, देह की स्पृहा छोड़ करके, सुख की चिंता छोड़कर, पुत्र परिवार से बात भी नहीं करना चाहिए। स्पृहा की तो बात अलग है, घर छोड़ते समय स्त्री से भी नहीं बात करना चाहिए। बात करने में कहीं रो देगी तो आदमी घर छोड़कर जाएगा, ये बहुत खतरा है, घर से चल देना चाहिए, क्योंकि अंततः संग छूटेगा ही। जैसे फ्लाइट तैयार होता है तो विमान वाले बोलते हैं ना कि बेल्ट बांध लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, कीजिए कीजिए, सावधान हो जाइए। तो अब जाना है, जाना है तो अब स्त्री से बात करने का समय गया, और बच्चे से बात करने का, तो गृहात प्रव्रजित, प्रव्रजन का है तो घर से चल दे, कहां जाए, पुण्य तीर्थ जलात लोकर, वृंदावन चला जाए या हरिद्वार चला जाए, कहीं भगवान के धाम में जाए जहां गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, पूर्ण तीर्थ के जल में स्नान करे। आप्लुत, आप्लुत का अर्थ है कि कई बार स्नान करे। जब शरीर जाने वाला है तो गंगा जी के जल से भींगा रहे शरीर बहुत अच्छा है, या जमुना जी के जल से या राधा कुंड में, इस तरह से शरीर पर वो पानी लगना चाहिए जो भगवान के चरणों से संयुक्त है। यह जीवन का सौभाग्य है। आज भी हमने देखा है हिंदुओं में कोई शरीर छोड़ने लगता है तो थोड़ा सा पानी गंगा जी का रखते हैं तो मरते समय जरूर डालते हैं मुख में गंगा जी का पानी। तो म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है बता रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न हुआ है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब कह ही दिए कि हरि कीर्तन करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, तो म्रियमाण हो तो उसको भी चाहिए कि वो सुने, तो असंग कहां से सीखेगा, वैराग कहां से सीखेगा, बेचारा जिंदगी भर तो रहा है पुत्र परिवार में, तो एकाएक कैसे वो परिव्रजन करेगा और कहां जाएगा उस बुढ़ापा में। तो उसका वो समाधान करते हैं कि उस सभा में बहुत प्रकार के लोग बैठे हुए थे, इसलिए कुछ कुछ उनकी रुचि के अनुसार भी बोलना जरूरी था, नहीं तो उठकर चले गए होते। जीव गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि यदि सुखदेव गोस्वामी उनके मन के अनुसार कुछ नहीं बोले होते तो लोग दसम स्कंध तक नहीं रुकते कथा सुनने के लिए। अरे भागो, ये केवल हरे कृष्ण कर रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। इसीलिए कुछ अष्टांग योग का भी वर्णन करना, उनकी रुचि रह जाए जिसे बैठे रहे। अंततः भगवान की कथा सुनानी थी, दसम स्कंध सुनाना था सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद तो सब कुछ भूल जाएंगे। और एक और भी आता है बात है कि जनरल आदमी के लिए क्या करना चाहिए, उसे चाहिए कि घर छोड़ दे मरने से पहले, घर में ना मरे, घर में मरने वाले की दुर्गति होती है। अब वह बात दूसरी है कि भाई वैष्णव का घर है, डीटी है, वैष्णव जुटे हुए हैं, शरीर छूट रहा है, तो वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन जनरल तो ही बताया जाएगा कि घर छोड़ देना चाहिए। यदि वो चाहता है कि भगवान के पास जाऊं तो शरीर छोड़ने से पहले घर छोड़ देना चाहिए, और घर छोड़ करके देह के सुख पर विचार नहीं करना चाहिए, कहां खाएंगे, कहां सोएंगे, ये सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत विस्तृत दुनिया है, कहीं ना कहीं खाने को मिल जाएगा, है ना। अरे हम लोग तो घर छोड़े हुए व्यक्ति हैं, आप देख ही रहे ना, घर छोड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई डिफिनिट किचन नहीं है, लेकिन और लोगों से अच्छा खाने को मिलता है, और लोग इतना आग्रह करते हैं कि जी में जी उब जाता है, नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना क्यों मिल रहा है, इसलिए कि कृष्ण के भक्त, नहीं तो कौन फ्री खिलाएगा बताइए। अरे फ्री खिलाना क्या, खाने के बाद उल्टे फीस देते हैं, है ना। आप हमारे घर खाए आए, बहुत कृपा के, ऊपर से ये लीजिए, है ना। देखिए भगवान की दया, ये हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति, जिसमें ये बातें गृहस्थों के जीवन में भरी गई कि साधु का महात्मा का स्वागत करके उसको कुछ देना, यह जीवन का एक अंग है। इस तरह का कल्चर संसार में कहीं नहीं, कहीं नहीं है इस प्रकार की बात। तो जो भी हो, वास्तव में सारी दुनिया में देखा जा सकता है, कोई व्यक्ति यदि भगवान का चरण कमल पाने के लिए चल दिया, अपने निश्चित किचन छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, तो उसको खिलाने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। और वह अभी अब क्या खाने पीने की चिंता करनी है, जब अंत काले तो पुरुषाय आगते, जब अंत काल आ गया तो अब खाने पीने की चिंता थोड़े करेगा आदमी, अब तो भगवान के पास जाने की चिंता करेगा। तो घर से निकल करके निसंग होकर के चल देना चाहिए तीर्थ में। ये नहीं कि किसी बच्चा को ले लिया कि चलो वहां कुछ सेवा करते रहना, पानी लाना ढो करके या शॉपिंग करके हमको कुछ देना, नहीं नहीं वो सब माया के पुतले हैं। खासकर बच्चा और स्त्री मरने के समय में इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, इनका तो भूल कर संग नहीं होना चाहिए, भले डिवोटी हो चाहे कुछ भी हो। बच्चा अगर भक्त भी है, चाहे ये पत्नी भक्त है, फिर भी देह के संबंधी इमीडिएट जो है इनसे दूर होना चाहिए शरीर त्यागते समय। ये सब बातें बताई गई हैं, जो हूबहू मैं बोल रहा हूं। भाई रह सकता है और कोई संबंधी रह सकता है, लेकिन पत्नी और पुत्र नहीं, क्योंकि माया की जो जबरदस्त पकड़ है इन्हीं दो के रूप में है। हमें और सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन इसको नहीं छोड़ पाता। और अब जाना है छोड़ करके, तो इनसे देहे स्प्रिया और देहे देह से अनु तम तम अनु, जो देह के अनु है, तो देह के अनु कौन है? अनु माने संलग्न, देह और देह से ज्यादा सटे हुए कौन लोग हैं? स्त्री और बच्चा, यही दो देह से संबंधी है ना। उधर बिहार में भोजपुरी में कहते हैं किसी स्त्री का पानी ग्रहण किसी से होता है तो लोग ये व्यवहार करते हैं कि उसने उसका देह पकड़ा है, उसने उसका हाथ पकड़ा है। तो देह से और हाथ से सटा हुआ स्त्री हुई और स्त्री पुरुष के संजोग से बच्चा हुआ, ये देह के सब संबंधी इमीडिएट। इसीलिए बहुत सतर्क होना चाहिए शरीर छोड़ते समय। एक बात है कि अगर बेटा भक्त है तब तो दूसरी दफा लगेगी, कोई वैसा नहीं, फिर भी कहीं देह के कारण बहुत ममता हो जाए, हो जाए वो हो जाए, इसीलिए छोड़ने की बात कही जा रही। और छोड़े, घर छोड़ा, देह के सुख का विचार छोड़ा, स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, ये परफेक्ट चेतना में आने के लिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि घर पर इतना सुख था, सुविधा थी, वहां जाऊंगा, कोई पूछेगा नहीं, डांटेंगे साधु लोग इधर उधर, कोई जाए किसी तीर्थ में किसी मंदिर में कोई कहे गेट आउट इधर मत, तो सोचेगा इससे तो अच्छा मेरा घर था, वहां हीटर भी था, एसी भी था, सब था, ये था, बाप रे बाप। कभी कभी इधर बसने वाले इंडियन लोग सोचा करते हैं मरते समय भी, नहीं ठीक है इधर ही मर जाएंगे, इधर क्यों मरेंगे, भारत में मरना चाहिए। खटवांग महाराज स्वर्ग छोड़कर के अयोध्या जी आ गए, तो अमेरिका छोड़कर क्यों नहीं आ जाएंगे? लेकिन ममता रहती है कि हाय रे ऐसा कैसे, घर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो यही कामना रह गई तो व्यक्ति भगवान के पास कैसे जाएगा? प्रश्न है कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे। वहां पूर्ण तीर्थ जलापूर्त, वृंदावन में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के कुछ स्नान करे तीन तीन बार, अरे कुछ नहीं भजन होगा तो गंगा में स्नान करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, इतनी शक्ति है गंगा में, समझे? विश्वास करना चाहिए। वो ब्रज भूमि ब्रजरज शरीर में सटा रहे मरते समय तो सदगति में कोई संदेह नहीं है। गंगा जमुना का पानी यदि सटा रहा शरीर में तो कोई बात नहीं, और भूल चूक हो गई है भगवान का भजन नहीं हुआ है फिर भी उसकी सदगति होगी, वो अपने बल से उसको मुक्त करेगा। और भजन करे तब तो अद्भुत फायदा है, तीर्थ में जा करके अगर भजन करे तब तो कई गुना लाभ। हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर एस्केलेटर होता है ना, उससे चौड़ा बेल्ट चलता है, एस्केलेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्केलेटर, तो वो धाम जैसा है, उस पर कोई बस केवल चढ़ जाए तो चलता जाएगा, है ना। वृंदावन धाम, हरिद्वार या जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारका, ये सब जो धाम है, वहां केवल रहे व्यक्ति तब भी वो गाड़ी चलती रहेगी। जैसे उस पर मान लीजिए एस्केलेटर पर बच्चा भी है, कोई भी है, केवल खड़ा है तब भी जाता है, अगर उस पर चले तो और फास्ट जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप राइट में लेफ्ट में वॉकिंग कीजिए और राइट में खड़े रहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो अगर वॉकिंग कर रहा है, मतलब कोई भजन कर रहा है, जप कर रहा है, तो और फास्ट जाएगा, अगर नहीं भी कर रहा है तो उसके स्पीड से तो जाएगा। ये इस तरह से ये धाम का प्रभाव है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते पूर्ण तीर्थ जला लेता, घर छोड़ करके परम पवित्र धाम में चला जाए, जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ जमुना जी हैं, जहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड है, गिरिराज जी की तलहटी होनी, ऐसे जगह पर चला जाए। वहां जाकर के क्या करे, अब ये बात कल बताई जाएगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।